नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों के बीच मित्रता प्रगाढ़ होती रहेगी। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों से 16 बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज दोपहर विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्री पुतिन की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारत रूस रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी, और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में 16 समझौते किए हैं। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ये समझौते हुए। इसके बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस व्यापार मंच में भी शामिल हुए। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति पर दृढ़ता से चलते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि व्यापार हो या कूटनीति, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है।
आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा संपन्न होने के बाद कल रात पालम हवाई अड्डे से रूस के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने उन्हें विदाई दी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में बनास डेयरी में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे सनादर में बनास डेयरी के जैव, CNG और उर्वरक संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे और अत्याधुनिक 150 TPD मिल्क पाउडर और बेबी फूड संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति डेयरी विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि मूल्य संवर्धन, पशुधन उत्पादकता, जल संरक्षण और ग्रामीण सहकारिता को मजबूत करने के क्षेत्र में बनास डेयरी द्वारा की गई व्यापक पहलों की प्रगति की समीक्षा करेगी। दिन के दौरान श्री शाह सनादर में बनास डेयरी की विभिन्न सुविधाओं का दौरा करेंगे। वे अगरतला में नवनिर्मित बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का भी दौरा करेंगे। यह एक ऐसी पहल है जो किसानों की आय को बढ़ावा देगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देगी। श्री शाह अगतला में महिला दुग्ध उत्पादकों के साथ भी बातचीत करेंगे। वे रैया में जर्म ट्रांसप्लांट लैब में बनास डेयरी की पशुधन पहलों की भी समीक्षा करेंगे और बाद में पालनपुर में बनास डेयरी के ऑयल मिल और आटा और संयंत्र का भी दौरा करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
इससे पहले श्री अमित शाह ने कल गांधीनगर में कृषि, ग्रामीण तकनीक और मानवता को सशक्त बनाने से संबंधित अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया और सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों का भी शुभारंभ किया। इन नई पहलों में डीजी केसीसी, कैंपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, सहकारी शासन सूचकांक, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण एप्लीकेशन, शिक्षा सारथी प्रौद्योगिकी फोरम भी शामिल है। गृहमंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकार टैक्सी सेवा शुरू की है, जिसमें परीक्षण के स्तर पर 51,000 से अधिक ड्राइवरों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य इसे देश की सबसे बड़ी सहकारी टैक्सी कंपनी बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। श्री नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जरूरी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।
नागर विमानन मंत्रालय दो मुद्दों पर सभी आवश्यक पक्षों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। पहला है यात्रियों की देखभाल और सुविधा, जिसके तहत हम हवाई अड्डों पर यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को कम करना चाहते हैं, और दूसरा हम देश में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना चाहते हैं। मंत्रालय इसे प्राथमिकता देता है और पहले दिन से ही इस पर पूरी तरह से काम कर रहा है।
इससे पहले सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देश में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सुगम यात्रा और पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। देश में कुल 37 रेलगाड़ियों में 116 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। दक्षिण रेलवे ने सबसे ज्यादा डिब्बे बढ़ाए हैं, जिससे 18 रेलगाड़ियों की क्षमता बढ़ी है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों से 16 बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 850 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस अभियान का लक्ष्य जबरन वसूली, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती और झपटमारी में शामिल बड़े गिरोहों को निशाना बनाना था। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापों में पुलिस ने 18 पिस्तौल, 43 जिंदा कारतूस, बटन एक्ट चाकू, दो कारें, 3 दोपहिया वाहन, 122 मोबाइल फोन, 2 वायरलेस सेट बरामद किए और एक बुलेट प्रूफ थार और बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो एन गाड़ियां भी जब्त की। देश आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। इस अवसर पर देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
आज भारत की संवैधानिक आत्मा को आकार देने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा हर साल महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये स्मरण उत्सव डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति का सम्मान करता है, जो की एक दूरदर्शी समाज सुधारक, न्यायविद और राजनेता थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य लोग आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन सर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संसद भवन लॉन में डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मगत प्रतिमा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए पूरा कार्यक्रम जनता के लिए खुला रहेगा। सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आज भी पीढ़ियों और वर्तमान सरकार को प्रेरित करते हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत अब तक 2,80,46,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ में SIR का कार्य जोर शोर से जारी है। राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाकों में भी बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं तक पहुँचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीजापुर जिले के उप निर्वाचन अधिकारी एनआर गवेल ने बताया कि इंद्रावती नदी के दूसरी ओर घने वन वाले क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बीएलओ की टीमों को नाव और स्टीमर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
बीजापुर जिले के अंतर्गत लगभग 10 मतदान केंद्र हैं, जिसमें लगभग 20-22 हजार के आसपास मतदाता है, तो उनका भी एफआईआर का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। बीएलओ की सहायता के लिए टीम भी लगाई गई है, स्टीमर की व्यवस्था की गई है। नदी के उस तरफ जो घने जंगल है वहाँ पे हमारे बीएलओ निरंतर जा रहे हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार गुजरात जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में ये मुकाबला श्रृंखला के विजेता का फैसला करेगा। चेन्नई में हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों टीमें खेल समाप्त होने तक 2-2 गोल से बराबर थीं, जिसके बाद भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की। भारत कल सेमीफाइनल में 7 बार के विश्व कप विजेता जर्मनी से खेलेगा। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता से जुड़ी खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भारत और रूस, देशबंधु ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, ध्रुव तारे जैसी भारत रूस दोस्ती। इंडिगो की देशभर में 1000 उड़ानें रद्द, यात्री रहे परेशान, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में सबसे ज्यादा अफरा तफरी, 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द टिकटों पर मिलेगा पूरा रिफंड। हिंदुस्तान ने मुसीबत शीर्षक से खबर प्रकाशित की है, इंडिगो जमी तो किराया आसमान पर, घरेलू उड़ानों का टिकट 4 गुना महंगा। धरती की जन्नत में दिल्ली सा हाल, जम्मू कश्मीर में पहली बार AQI 288 पर, दैनिक भास्कर ने डल झील के ऊपर स्मॉग की तस्वीर के साथ ही खबर प्रकाशित की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है, रुपए अपने को खुद ही संभालेगा, जनसत्ता की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, RBI ने कहा, ग्राहकों को केंद्र में रख नीति बनाए बैंक, लंबित शिकायतों के निपटान के लिए 1 जनवरी से अभियान। लैक्मे को टॉप ब्रांड में शुमार करने वाली सिमोन टाटा नहीं रही, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों ने यह खबर सचित्र दी है।
धन्यवाद प्रियंका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों के बीच मित्रता प्रगाढ़ होती रहेगी। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों से 16 बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज दोपहर विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।